From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the one.
Namaskar, this is Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ka annual general conference ki priesthood session Salt Lake City se conference center ki Temple Square se lati hai. Ye dunia mein hazaro garja gharo mein dikhlaya de raha hai. Is session ki music program Young University ki priesthood choir dengi.
Henry B. Eyring,
जो गिरजा की फर्स्ट प्रेजिडेंसी में है, इस सेशन का अगुवाई करेंगे.
We welcome you, brethren.
स्वागत है भाइयों इस प्रस्तुत सेशन में जो 180th एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस है द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स का. प्रेजेंट थॉमस एस मंसन जो इस कॉन्फ्रेंस में अगुवाई कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई कर रहे हैं और मैं दिस सेशन को कंडक्ट करेंगे. यह सेवा की उपयोग सैटेलाइट ट्रांसमिशन के द्वारा दुनिया भर में सभी प्रस्तुत को दिखाया जा रहा है. इस सभा का ज्ञान गायन ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी के प्रस्तुत क्वायर के द्वारा दिया जाएगी. रोनल स्टेली और क्लेकर सेशन ओगन पर क्वायर गाने से शुरुआत करेगी इस प्रस्तुत सभा की. God loved us, so He sent His Son. Elder Keith K. Hilbig, फिर प्रार्थना करेंगे जो 70 के हैं.
Oh.
Dear gracious Heavenly Father,
हमारे पिता परमेश्वर, आज रात्रि को हम इकट्ठा हुए हैं, सब साथ एरोनिक प्रिस्टुर और मेलकिसेदेक प्रिस्टुर, हम आभारी हैं आपको जो हम सब यहाँ आए हैं अपने आप को तैयार करने के लिए कि वे आपके सुसमाचार को समझ सके और सीख सके और फिर दूसरों को बतला सके। आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ हो कि हम समझ सके जो प्रेसिडेंट मॉनसन हमको बताना चाहते हैं और हम महसूस कर सके कि वो हमारे भविष्यवक्ता है। और हम अब धन्यवाद देते हैं आपके अच्छाइयों को और जो आप सबने हम सब के लिए किया है, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
The choir will now sing.
Choir अब गाएंगे Choose the Right। गाने के बाद Elder Dallin H. Oaks जो Quorum of the 12 Apostles के है भाषण देंगे। उसके बाद Elder Ronald A. Rasbin जो Presidency of the 70 का है भाषण देंगे। उसके बाद by David L. Beck जो Young Men General President है बोलेंगे।
In these times,
अभी के बुरे समय में बहुत लोग प्रभु की दया और आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं बीमारों को प्रिस्टुड ब्लेसिंग मेडिकल साइंस और प्रार्थनाओं से चंगा करने के विषय में बतलाना चाहूंगा। हम अच्छे साइंस के ज्ञान और तरीका में विश्वास करते हैं। हम न्यूट्रिशन, कसरत और सभी चीज जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं, डॉक्टरों और सर्जन के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मेडिकल साइंस प्रार्थना और प्रिस्टेड ब्लेसिंग को महत्व विन कर देगी। एक ने ब्रिगम यंग से प्रिस्टेड ब्लेसिंग के लिए कहा, उससे पूछा गया, क्या तुमने दवा इस्तेमाल किया? जिन्होंने नहीं कहा और कहा कि मैं सिर्फ प्रिस्टेड ब्लेसिंग चाहता हूं, उनको प्रेसिडेंट यंग ने बतलाया, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है कि जब हम बीमार रहे और बिना दवा और इलाज से सिर्फ प्रभु की आशीर्वाद की मांग करते हैं, ये तो नासमझ होगी। अगर मैं अपने मकई और गेहूं को उगाने के लिए प्रार्थना करता रहूं और अपने जमीन में बीज भी ना छोड़ूं, हमें सभी अच्छे इलाज और दवा को इस्तेमाल करना चाहिए और स्वर्ग पिता को हमारे शरीर को अच्छा करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रिस्टेड ब्लेसिंग के लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए ये सोचकर कि सभी तरीका को इस्तेमाल कर लूं। जरूरत के समय में प्रार्थना और ब्लेसिंग पहले आती है। धर्मशास्त्र बतलाता है कि हमें सभी समय प्रार्थना करना चाहिए और सभी चीज ज्ञान और अच्छे रीति से करना चाहिए। हम जानते हैं कि प्रार्थनाएं भी बीमारों को चंगा कर सकता है। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि विश्वास की शक्ति व्यक्ति को चंगा करता है। अपोस्टल पौल जेम्स ने कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि वो चंगा हो सके, और फिर कहा कि सच्चे आदमी का प्रार्थना बहुत कुछ कर सकता है। जब एक नारी यीशु को छूकर चंगा हुआ, यीशु ने बतलाया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। बुक ऑफ मोमन सिखलाता है कि प्रभु की शक्ति से कार्य कर प्रभु की शक्ति से कार्य करता है जब उनके बच्चों में विश्वास होता है। सर्वे से देखा जाता है कि 8 में से 10 अमेरिकन विश्वास करता है कि चमत्कार अभी भी होता है। बहुतों ने खुद चमत्कार महसूस किया है। कई गिरजा के लोगों ने भी विश्वास के द्वारा चंगा हुआ है, और हम अपने गिरजा में भी इन्हें अनुभव करते हैं। जब टेक्सास के अखबार में एक आदमी ने अपने चमत्कार को बतलाया, जब उनके 5 साल की बच्ची कठिनाइयों से सांसें ले रही थी, तब उन्होंने उन्हें को अस्पताल ले गया। जब वो वहां पहुंचा, उनके गुर्दा और फेफड़ा रुक गया था। 107 की फीवर के कारण उनकी शरीर नीला और लाल हो चुका था। डॉक्टरों ने बतलाया कि वह टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के कारण मर रही थी। जब ये सूचना उनके परिवार और दोस्तों को मालूम हुआ, प्रभु में विश्वास करने वालों ने उस बच्ची के लिए प्रोटेस्टेंट गिरजा में प्रार्थना किया। चमत्कार से वह बच्ची मौत से जागकर एक ही सप्ते में अपने घर वापस लौट गई। उनके आजा ने लिखा, यह बच्ची एक जागती सबूत है कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है और चमत्कार करता है. बुक ऑफ मोमेंट सिखलाता है कि प्रभु उनको दिखता है जो उनमें विश्वास करता है. यह पवित्र आत्मा की शक्ति से होता है और चमत्कार सभी राज्य जगत और इंसानों में होता है उनके विश्वास के द्वारा. आप लोग जिनके पास मेलकिसेदेक प्रिस्टुड है और युवक जिन्हें ये मिलेगा, मैं प्रिस्टुड की शक्ति से चंगा होने के विषय में बतलाना चाहूंगा. हमारे पास ये प्रिस्टुड शक्ति है और हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए. अभी की कठिनाइयों से हम जानते हैं कि पहले से ज्यादा इस शक्ति की जरूरत पड़ेगी. धर्मशास्त्र सिखलाता है कि प्रभु के सेवक को अपने हाथ बीमारों पर रखेगा और वो चंगे हो जाएंगे. चमत्कार होता है जब प्रिस्टुड से बीमारों को आशीर्वाद दिया जाता है. मैं ये चमत्कार महसूस किया है. छोटे से मैंने चमत्कार देखा है जैसे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है और तुमने भी महसूस किया है. बीमारों को प्रिस्टुड से आशीर्वाद देने के लिए 5 चीजों की जरूरत है. पहला अनॉइंटिंग, दूसरा अनॉइंटिंग को सील करना, तीसरा विश्वास, चौथा आशीर्वाद की शब्द, पांचवा प्रभु की इच्छा. ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि प्रिस्टुड की शक्ति से तेल लगाकर आशीर्वाद दिया जाता था. इस कार्य को पवित्र कारण बतलाया गया है और इसके कारण स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त होता है. न्यू टेस्टमेंट में हम पढ़ते हैं कि यीशु के चेलों ने भी बीमारों को तेल से अनॉइंट करते थे. जेम्स की पुस्तक सिखलाता है कि अनॉइंटिंग प्रिस्टुड की शक्ति का कार्य है. तुम में से कोई बीमार है, गिरजा के एल्डर को बुलाओ और उनको तेल से अनॉइंट करके प्रभु के नाम से प्रार्थना करने दो और विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचाएगा और प्रभु उनको चंगा करेगा. जब कोई मेलकिसेदेक प्रिस्टुड की शक्ति से अनॉइंट किया जाता है, उसी शक्ति से फिर वह अनॉइंटिंग सील किया जाता है. सील का मतलब उसको स्वीकार करना और उसी प्रकार मोहर लगाना. इससे स्वर्ग का खिड़की खुल जाता है कि प्रभु उनको आशीर्वाद दे जो वह उनके लिए चाहता है. प्रेसिडेंट ब्रिगहम यंग ने सिखलाया, मैं बीमारों पर हाथ रखता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रभु की शक्ति मेरे द्वारा उन बीमारों में जाकर उनकी बीमारियों को निकाल दे. जब हम तैयार रहते हैं और पवित्र रहते हैं, प्रभु की शक्ति हमारे द्वारा बीमारियों को चंगा कर सकता है. हमें जानते हैं कई जगह ऐसा हुआ है, लेकिन हम चमत्कार को सरल से लोगों को नहीं बतलाते क्योंकि भविष्यवक्ता ने हमें बतलाया है कि हमें इसकी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए. यह सिर्फ हमारे अच्छाई और मुक्ति के लिए है. चंगा होने के लिए विश्वास की आवश्यकता है. बुक ऑफ मोमन सिखलाता है कि अगर परमेश्वर के बच्चे में विश्वास नहीं, वहां चमत्कार नहीं हो सकता. प्रेसिडेंट स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने कहा है, कुछ लोग विश्वास को कम समझते हैं. जो बीमार है और उनके परिवार सोचते हैं कि प्रिस्टुड और प्रिस्टुड होल्डर के कारण वह चंगा हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके चंगा होने का जिम्मेदारी उनके विश्वास में है.
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है. यीशु ने कई बार बतलाया है.
प्रेसिडेंट
किम्बल ने बतलाया है कि कई बार जो बीमार है एल्डर्स को जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि एल्डर्स की विश्वास उनको चंगा कर दे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता. उन्होंने एक सिस्टर जिनको प्रिस्टूट की आशीर्वाद मिला था उनके विषय में बतलाया. फिर जब उनसे पूछा गया कि वह फिर से आशीर्वाद चाहेगी, तब उस सिस्टर ने बताया, नहीं, मुझको आशीर्वाद मिल चुका है और निर्णय का कार्य हो चुका है. अब मेरी विश्वास ही मुझे चंगा करेगा. प्रिस्टर ब्लेसिंग का एक और भाग है जो हम ब्लेसिंग के समय बोलते हैं. इनका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो गिरजा के रिकॉर्ड में नहीं जाती. पेट्रियाकल ब्लेसिंग में जो शब्द बोला जाता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है होती है. लेकिन जब हम बीमारों को ब्लेसिंग देते हैं, अनॉइंटिंग, सीलिंग, विश्वास और प्रभु की इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. एल्डर जो ब्लेसिंग देता है प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु की वाणी ब्लेसिंग में देता है. प्रेसिडेंट यंग ने बतलाया, ये आपकी सौभाग्य है और जिम्मेदारी है कि आप इस तरह जिए कि आप वही बोले जो प्रभु आपको प्रकाशित करता है. जब ऐसा होता है ब्लेसिंग पूरा होता है और चमत्कार होता है. मैंने महसूस किया है ब्लेसिंग के समय कि मैं वही बोल रहा हूँ जो प्रभु की इच्छा होती है. लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जब मैंने ब्लेसिंग के समय कठिनाइयां महसूस की है. हम सब एक ही तरह सच्चे नहीं है. हमें प्रभु की आत्मा अलग तरह से महसूस होती है और ब्लेसिंग के समय हमारी इच्छा हमें दबाव डालती है कि हम वो बोले जो हम चाहते हैं. हमारी कमी हमें दबाव डालती है जो हम बोलते हैं. इस प्रकार ब्लेसिंग के शब्द चंगा होने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. सिर्फ मरीज का विश्वास और प्रभु की इच्छा उन्हें चंगा कर सकता है, चाहे हम वो बोले या ना बोले. इस तरह अगर हम ब्लेसिंग के समय अपने इच्छा जाहिर करते हैं तब हमारी इच्छा पूरा नहीं होती. किसी एल्डर को ब्लेसिंग देने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए डर कर कि वह क्या बोलेगा. हमारी शब्द मरीजों को हिम्मत और आनंद देता है, लेकिन इलाज सिर्फ विश्वास और प्रभु की इच्छा देती है.
And the Lord's will, not upon the words spoken by the elder who officiated.
अब आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ. जब हम प्रभु की प्रस्तुत की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं हमें जानना चाहिए कि वह सिर्फ विश्वासियों की प्रार्थना से अपनी इच्छा द्वारा आशीर्वाद देता है, ना कि हमारी इच्छा द्वारा.
Cannot produce a result contrary to the will of him whose priesthood it is.
Doctrine and Covenants में हमें सिखलाया गया है कि जो विश्वास करता है कि वह चंगा हो जाएगा, वो चंगा हो सकता है. प्रभु ने यह भी बतलाया है कि अगर हम प्रभु की इच्छा को चाहेंगे हमें मिलेगा. जो हमें जो उन उसका इच्छा है इस प्रकार हम सीखते हैं कि अगर मरीजों में विश्वास नहीं है और हम प्रिस्टुड ब्लेसिंग देते हैं सिर्फ प्रभु की इच्छा ही पूर्ण होती है
cannot give a priesthood blessing that will cause a person to be healed if that healing is not the will of the Lord.
हम प्रभु पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और उनके इरादा को जानते हैं और हम उन पर भरोसा करते हैं. यीशु मसीह पर विश्वास सिद्धांत का पहला नियम है. विश्वास का मतलब भरोसा. मैंने अपने भाई का भरोसा महसूस किया जब वह अपनी छोटी बच्ची को दफना रहा था. उन्होंने इन शब्दों को कहा, मैं जानता हूं कि यह प्रभु की इच्छा थी कि मेरी बच्ची मरे. उनके पास अच्छी मेडिकल केयर थी. उनको प्रिस्टुड ब्लेसिंग भी दिया गया था. टेम्पल में उनका नाम प्रार्थना के लिए दिया गया था. बहुतों ने उनके लिए प्रार्थना किया था. और मैं जानता हूं कि उनकी परिवार में इतना विश्वास है कि वह चंगा हो सकती थी अगर वह प्रभु की इच्छा होती. इसी प्रकार का भरोसा मैंने एक और पिता के शब्दों में महसूस किया जिनके बच्ची भी मर गया था. उन्होंने कहा, चाहे कोई नतीजा रहे, हमारा यीशु मसीह पर विश्वास अटल रहेगा. ये शिक्षा मुझे सत्य सुनाई देती है. हम वो सब कुछ करें कि बीमार चंगा हो जाए और फिर हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए. मैं बयान यीशु मसीह प्रिस्टुड और नियमों के सच्चाई का बयान देता हूँ. यीशु मसीह के नाम और मैं बयान देता हूँ यीशु मसीह के जिसके हम सेवक हैं और चेले हैं और जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है कि हमें आनंद जीवन मिल सके. और यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
नमस्ते मेरे प्रिस्टुड के प्यारे भाइयों. आज रात के मैं मिशनरी सेवा के विषय में बात करूंगा. मेरे शब्द एरोनिक प्रिस्टुड के सभी दुनिया भर के युवाओं के लिए है और उनके पिता दादा और प्रिस्टुड लीडरों के लिए जो उनके देखभाल करते हैं. मिशनरी कार मेरे दिल के करीब है. जैसे ये सभी 8 कोरम ऑफ 70 के भी है जिनके प्रभु ने चुना है कि जाओ सभी शहर और इलाके में, नहीं तो वो आएंगे. मिशनरी सेवा गिरजा को बहुत खास कार्य है और जिस किसी ने इसको स्वीकार किया है उसको आशीष मिलता है. जब प्रभु मानव के बीच में था उन्होंने माजों से भुलाया और कहा कि वे अपने जालों को छोड़कर साथ हो ले, मैं तुमको इंसानों से मछुआ बनाऊंगा. प्रभु ने बुलाया दी कि माता आदमी जिन्हें द्वारा लोग समाचार की सच्चाई जान गए. साल 1827 और जून में प्रोफेट जोसेफ स्मिथ ने हिबा सी किम्बल को बुलाया थी कि अपोजल की कि वे इंग्लैंड में मिशनरी सेवा के लिए जाए. बुलावा आया जब दोनों केटलैंड मंदिर में थे और जोसेफ ने ईश्वरी अधिकार से कहा, भाई हिबा, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बोला मेरे सेवा हिबा को इंग्लैंड जाने दो और वहाँ प्रचार करेगा और जीवन का आनंद जीवन का. यह पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाया एक नमूना है कि कैसे प्रभु अपने सेवकों को मिशनरी कार्य के भेजता है. आज दो मिशनरी साथ साथ जाते हैं प्रभु के आज्ञा से. एक ही वाणी, एक ही ईश्वरी बुलावा सेवा जो प्रभु के प्रोफेट देता है. प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन ने कहा, इस बुलावे के विषय में प्रचारक का कार्य तुम्हारे है जिंदगी भर के लिए। आनंद आशीष तुम्हारे इंतजार कर रहा है। अब तुम दर्शक नहीं हो परंतु प्रिस्टुड सेवा में भाग ले सकते हो। मौका तुम्हारा है मेरे एरोनिक प्रिस्टुड के लड़कों, क्या तुम तैयार हो? प्रभु को सभी काबिल युवक की जरूरत है तैयारी करने के लिए आज रात को ही, कि तैयार रहे मिशनरी सेवा के बुलावे के लिए। मुझे याद है कि हमारे परिवार में जो खुशहाली मिली थी जब हमारे दो बच्चों को मिशनरी सेवा का बुलावा मिला। आश्चर्य और हमारे दिलों में उमंग थे जब वे प्रॉफिट के पास से आए हुए पत्र को खोल रहे थे। हमारी बेटी को बुलावा मिला सेवा की मिशिगन डिट्रॉइट मिशन में और बेटे क्रिश्चियन को रशिया मैस्को साउथ मिशन को। मुझे और बहन रेजबेन को मौका मिला सेवा को न्यूयॉर्क नॉर्थ मिशन में कई साल पहले। मैं आश्चर्य होता था जब मिशनरी आते थे न्यूयॉर्क सिटी में। पहले ही दिन जब मैं उनसे बात करता था, मैं धन्य था सभी मिशनरी के लिए। मैं महसूस करता था कि यह मिशनरी सेवा एक ईश्वरीय बुलावा था इनके लिए और मेरे लिए एक मिशन प्रेसिडेंट का। सेवा खत्म करने के पर मुझको प्रेसिडेंट गॉर्डन बी हिंकले ने बुलावा दी गिरजा में 70 का। नया जनरल अथॉरिटी बनने पर मैंने ये सीखा जब मैं 12 के साथ बैठकर मिशनरियों के सेवा करने के लिए भेजते और 300 मिशन्स में। प्रेसिडेंट हेनरी बी आयरिंग के सहायता और आज्ञा से मैं एक घटना को बताता चाहता हूँ जो मेरे और उनके साथ हुआ कई साल पहले जब वे कोरम ऑफ द 12 में थे। हर एक अपोजल के पास इस राज का चाबी है जिससे वे इस्तेमाल करते हैं इस गिरजा के प्रेसिडेंट यानी कि प्रॉफिट के आज्ञा पर। एल्डर आयरिंग सभी मिशनरी को मिशंस में नियुक्त कर रहे थे और मैं सीख रहा था। मैं एल्डर आयरिंग को एक कमरे में मिला जहां आवा कंप्यूटर रखा हुआ था जिसके द्वारा से हम काम करने वाले थे। मिशनरी भाग से एक कर्मचारी हमको सहायता करने भी आया था उस दिन। पहले हम अपने घुटनों पर प्रार्थना की। मुझको याद है कि एल्डर आयरिंग ने नम्रता से प्रार्थना की उसके सही आशीष मिले कि वे जान सके कि मिशनरियों को कहाँ भेजा जाए। जो शब्द सही इस्तेमाल एल्डर स्माल ने वो उनका विश्वास दिखलाता था उस दिन। जैसे काम शुरू हुआ एक मिशनरी का तस्वीर कंप्यूटर के स्क्रीन में आया। जैसे जैसे एक चित्र आता गया ऐसे लग रहा था कि वह मिशनरी उसी कमरे में मौजूद था। एल्डर आयरिंग फिर स्वागत करता मिशनरी को दया और प्यार भरी आवाज से। नमस्ते एल्डर राया, सिस्टर यंग, आज कैसे हैं? उन्होंने बताया कि उनके दिमाग वो ये सोचता था कि मिशनरी कहाँ पर सेवा कार्य करना चाहते थे, इससे उनको सहायता मिलता कि उनको कहाँ पर भेजा जाए। एल्डर आयरिंग फिर पत्रता बिशप्स और स्टेक प्रेसिडेंट्स को क्या कहना है सहित और बारे में और बातें उस। फिर वह कंप्यूटर में दूसरे भाग में जाता जहाँ दिखलाता सभी मिशंस को। आखिरी में जैसे उनको पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिलती वह मिशनरी को एक मिशन में सेवा में भेजता के लिए। और 12 से भी मैंने ये सीखा कि हर सभी प्रभु को अपोस्टल्स कई मिशनरियों को दुनिया भर में सेवा करने के लिए ऐसे ही नियुक्त करते हैं। मैं खुद अपने देश ईस्टर्न स्टेट मिशन में सेवा प्रदान की कई साल पहले और इस घटना से मैंने बहुत प्रभावित हुआ। और जब मैं मिशन प्रेसिडेंट के रूप में सेवा की तो मुझको दिल में गवाही मिली कि ये मिशनरीज मेरे पास प्रभु के पवित्र आत्मा के आशीष के द्वारा भेजा जाता है। कुछ मिशनरियों को नियुक्त करने के बाद एल्डर आयरिंग मेरे पास मुड़ता और कहा, तो भाई रेजमैन, तुम क्या लगता है कि इस मिशनरी को कहाँ भेजा जाए? मैं घबरा गया। मैं सांस से एल्डर आयरिंग को अनुमति दी कि मैं नहीं जानता और कि मैं नहीं जानता कि मैं जान सकता हूँ। उन्होंने मुझे देखा और कहा, भाई रेसबन, और करीब से देखो और तब तुम जानोगे। फिर मैंने अपना कुर्सी को एल्डा आयरिंग के और नज़दीक लाया और कंप्यूटर में देखा और करीब से देखा। थोड़े ही देर बाद में एल्डा आयरिंग फिर मुझको देखा, भाई रेसबन, तुमको क्या लगता है कि ये मिशनरी कहाँ भेजा जाएगा? मैं एक मिशन का नाम बताता था और फिर एल्डा आयरिंग मुझको देखता और कहता, नहीं वहाँ नहीं, और फिर वह खुद ही मिशनरियों को नियुक्त करता जाता पवित्र आत्मा के प्रेरणा के साथ। जैसे ही हम अंत पर आ रहे तब एक मिशनरी का चित्र कंप्यूटर के पर्दे पर आया। मुझको बहुत जोरों से पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली कि ये मिशनरी जो हमारे सामने था को जापान में भेजा जाए। मैं नहीं जानता था कि एल्डर आयरिंग मुझसे पूछेगा या नहीं, पर उन्होंने मुझसे पूछा। मैं नम्रता के साथ कहा उनसे, जापान। एल्डर आयरिंग तुरंत उत्तर दिया, हाँ वहां जाता है। कंप्यूटर के पर्दे पर जापान का सभी मिशन आया। मैं तुरंत जान गया कि मिशनरी को जापान सपोरो मिशन में नियुक्त करना चाहिए। एल्डर आयरिंग ने मुझसे मिशन का नाम नहीं पूछा, परंतु मिशनरी को जापान सपोरो मिशन में नियुक्त कर दिया। मेरे दिल में मुझको बहुत शांति मिली और बहुत आभारी हूँ प्रभु का, जो उन्होंने मुझको अनुभव कराया इस मिशनरी के बुलावे का। अंत में एल्डर आयरिंग ने बयान दी उद्धारकर्ता के प्यार का हर एक मिशनरी के लिए जो इस सुसमाचार के प्रचार करने के लिए दुनिया भर में भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि ये उद्धारकर्ता के प्यार के वजह से उन्हें सेवा जानते हैं कि ये बेहतरीन युवकों और युवकियों, बूढ़े मिशनरियों और बूढ़े पति और पत्नी मिशनरी सेवा में भेजा जाते हैं। मुझको ये भी गवाही मिला कि हर एक मिशनरी जो इस गिरजा में सेवा के लिए भेजा जाता है वो प्रभु के पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा भेजा जाता है उनके सेवा के द्वारा। मैं अंत में प्रभु के वाणी जो विटमा के भाइयों को उन्होंने बताया था बताता हूँ। उन्होंने सुना कि प्लेटों का गवाही दिया था और उनका बयान मोर्मन के पुस्तक के शुरुआत के पन्नों में लिखा गया है। वह गिरजा के पहले मिशनरीज थे जिनको गिरजा के प्रोफेट ने 1829 में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए भेजा था, जिसको गवाही मिली चुका था गई अब जाना चाहता है। जॉन और पीटर विटमा जूनियर को प्रभु ने कहा, became deeply concerned over the matter of their individual duty. John Peter Whitmer Jr. को प्रभु ने कहा, कई बार तुमने मुझसे ये जानना चाहा कि तुम्हें लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है। तुम जवान बच्चे अभी आप भी ये सवाल करते हो। प्रभु का उत्तर ये है, और अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे उचित कार्य यह है कि तुम लोगों को पश्चाताप के विषय में प्रचार करो, ताकि तुम मेरे पास इनको ला सको, ताकि तुम उनके साथ मेरे पिता के राज में आरंभ कर सको। जीवन के इस समय प्रभु के सेवा मेरे जवान दोस्तों तुम्हारे लिए बहुत उचित कार्य है। तैयारी करो, पवित्र रहो, परिवार और गिरजे के लीडरों से सीखो, आओ और मेरे साथ हो लो प्रभु के राज के संचार में बनने में। अपनाओ ईश्वरीय बुलावे को जो बहुत उचित कार्य है। ये मेरा नम्रता प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
I'm honored tonight.
मैं भारी हूँ कि आज रात गिरजा के युवकों से मैं बात करूँगा। ये मेरा आशीष है कि मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ दुनिया भर में। तुम कट नहीं को पूरी वृत्ता से साथ ले रहे हैं, मैं अपना प्यार और आशीर्वाद तुमको देता हूँ। तुम लोगों प्रेरणा देते हो जो तुम्हारे पास रहते हैं। सुनो एक युग की बातें जो हमारे गिरजा का नहीं है, जो अपने एक दोस्त को, दोस्त जो एरोनिक प्रस्तुत का है, उनका कुछ बता रहा था। मैंने कुछ अलग देखा लुइस के बारे में, ये बिल्कुल अलग है उन लोगों से, उनमें कुछ दिख रहा है। मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन वह अलग है और सबसे। तुम सिर्फ महसूस कर सकते हो, यह तुम दिखलाई नहीं देता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ खास जो लुइस और तुम को और युवक से अलग कर देता है, तुम पर अनोनिक प्रस्तुत दिया गया है, पवित्र आशीष है और कई इसका मूल्य नहीं जानता। आज रात को मैं तुमको सहयोग दूंगा कि तुम ये जानो कि एरोनिक प्रस्तुत कितना महान है। जब तुमको भगवान पवित्र प्रस्तुत देता है, वो तुम पर भरोसा करता है। वो जानता और तुमसे भरोसा करता है कि तुम प्रस्तुत की द्वारा सेवा करोगे, जैसे अन्य युवक उनके मुख्य कार्य करेंगे। उदाहरण में के लिए मोमन का पुस्तक अभी दुनिया में एक यीशु मसीह का गवाही नहीं होता अगर भगवान दो युवकों पर भरोसा न करता। प्रॉफिट मोमन जो पवित्र पुस्तक का तैयार किया सिर्फ 10 साल का था। 15 वर्ष के उम्र में प्रभु उनके पास आया और वह यीशु मसीह का प्यार जाना और पाया। मोमन का पुस्तक को जोसेफ स्मिथ ने अनुवाद किया और उसका छापा। वो सिर्फ 14 वर्ष का था जब स्वर्ग पिता और यीशु मसीह उसके पास आया। प्रेसिडेंट मोनसन ने कहा, बेहतरीन कार्य तुमको करना है, जैसे प्रभु की आज्ञा आता है तुमको, मुझको और सभी प्रस्तुत भाइयों को। आप सभी आदमी को अपना कर्तव्य सीख लेना चाहिए और अपना काम पूरी जिम्मेदार के साथ करना चाहिए जो उनका सौंपा है। तुमको सहयोग मिला इस बुलावा का, गिरजा ड्यूटी टू गॉड का प्रोग्राम ला रही है, जैसे प्रेसिडेंट आयरन ने आज पहले बताया। मैं बहुत उत्सुक हूँ इस प्रोग्राम का। पुस्तक तुम्हारे बिशप और ब्रांच प्रेसिडेंट की भेज दिया गया जून के शुरुआत में, तुरंत शुरुआत कर देना जैसे मिले। एक डिकन टीचर और प्रेस के लिए उनको सहयोग मिलना कार्य करने के लिए, जैसे आत्मिक शक्ति मिलेगा और प्रस्तुत कार्य के सक। पहले तुम को एक सुसमाचार का प्रस्तुत का कर्तव्य तुमको खोजो है, क्या स्वर्ग पिता तुमसे चाहता है, और तुम अपना गवाही और मजबूत करना है। फिर तुम योजना बनाओ कि कैसे इस शिक को तुम लगो कर सकते हैं। तुम अपना योजना अपने मुताबिक बनाना ताकि तुम औरों की सेवा कर सको। अनमोल मौका मिला है तुमको कि तुम खोर की आत्मिक शक्ति को बढ़ावा दे सकते। तब फिर तुम दूसरों के साथ एक सिख और अनुभव बांट सकते हो। ऐसे तुम खोर के बयान और दूसरों के विश्वास बढ़ा सकते हो, तुम्हारा ज्ञान और बढ़ा गया। मैं भारी हूँ एक युवक को जिन्होंने अपना अनुभव मुझको बताया है। उनको और एक रोनिक प्रस्तुत भाई को एक आदमी जो बीमार था उनके घर पर संक्रमण का ले जाना था। जब वे उनके घर पर पहुंचा तो उनके ये पता लगा कि मेडिकल रिपोर्ट की वजह से उनको खाना खाने को मना है और वह संक्रमण की ब्रेड को भी नहीं खा सकता। ब्रेड को आशीष देने के बाद युको ने आदमी को संक्रमण बढ़ाया। उन्होंने ब्रेड का टुकड़ा लिया, थोड़ी देर इंतजार किया और फिर अपने हाथों पर लगाया। युको ने जब इस विश्वासी भाई का अपना प्रेम सैक्रमेंट के लिए देखा, उनका ऐसा लगा कि वो उद्धारकर्ता का परिचय रहे हैं। युक बता सकता कि वह आदमी प्रभु से प्यार करता है। तो माता पिता, लीडरों और कोरम के सबसे मुख्य कार्य करते हो इस ड्यूटी टू गॉड प्रोग्राम में। संडे कोरम सबसे सभा में तुम को मौका मिला गया सिखाने, करने और बताने का। नया ड्यूटी टू गॉड का प्रोग्राम तुम्हें रास्ता दिखलाएगा ताकि तुम भगवान का कर्तव्य कर सको, आरोनिक प्रस्तुत को जान सको। पिछले साल में एक ऐसे सफर से गुजरा कि मेरा सोच आरोनिक प्रस्तुत के विषय में बदल गया। मैं बहुत खुश होगा अगर तुम खुद जानो जो मैं जानता हूँ। तुम सीखोगे कि आरोनिक प्रस्तुत क्यों मूल्य है तुम्हारे और गिरजाघर के लिए। तुम अपनाओगे कि क्यों इसे प्रस्तुत का एक मुख्य माना जाता है। तुम समझोगे कि प्रस्तुत चाबी स्वर्ग दूत की आशीष और सुसमाचार की तैयारी के विषय में। शैतान तुमको ये बतलाएगा कि तुम अभी छोटे हो या तुम लोग कम संख्या में हो। ये सब झूठा है। भगवान की शब्द मौजस के लिए आज तुम्हारे लिए है। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारे लिए एक कार्य है। उन्होंने तुमसे शक्ति दी है कि तुम कार्य कर सको। जब तुम भगवान के कर्तव्य निभाओगे तब तुम अपने परिवार को आशीष दोगे। यह तुम्हारा मुख्य प्रस्तुत का कर्तव्य है। ये माँ की बातें सुनो। मेरा बेटा लियो का पास प्रस्तुत है। यह एक आशीष है हमारे घर पर। वो अपने छोटे भाई के लिए एक उदाहरण है। वो हमेशा उनसे प्रार्थना करवाता, सैक्रमेंट को ले जाता है। उसका छोटा भाई देखता है, वो सहायता करता है परिवार के प्रार्थना में। मैं जानता हूँ कि वो हमारे लिए आशीष रहेंगे जैसे वो बड़ा होता रहेगा। वो छोटे भाई की बपतिस्मा करेगी। जैसे आप ड्यूटी टू गॉड का पूरा करेंगे, आप अपने दोस्तों को गिरजे के सदस्य बनने से मदद करेंगे। अच्छे भाइयों कितना आप उनके सहयोग पहुँचाएंगे, आप उनके भी मदद करोगे जब गिरजा से अलग हो गए हैं। जब आप ड्यूटी टू गॉड को निभाएंगे, आप अच्छाई को महसूस करेंगे। कठिनाई में निफाई को लोगों ने मोमन की अगुवाई को चाहा था। इसी तरह हम आप को चाहिए के लिए देखते हैं। प्रभु की भी ये मांग है। मैं गवाही देता हूँ कि तुम अपने हृदय में बदलाव महसूस करोगे। तुम पवित्र बनोगे और सैक्रमेंट को पवित्र के साथ आशीष दोगे। तुम सभी लड़कियों का साथ दया और इज्जत के साथ फैसाओगे, माता और पिता की आदर करोगे। तुम पवित्र आत्मा को देश नहीं पहुँचोगे अपने सोच और कैसे करते। तुम अब प्रभु को जानोगे जिसकी तुम सेवा करते हो और तुम उसके तरह बनोगे। मैं गवाही देता हूँ कि जब तुम विश्वास से आरोनिक प्रस्तुत में सेवा करोगे तब तुम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तुम्हारा परिवार की तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा कोरम गिरजा और इस दुनिया में तुम्हारा जरूरत है। जरूरी है कि हम भगवान का कर्तव्य पूरा करो। मैं जानता हूँ कि तुम करोगे। कुछ हफ्ते पहले सभादंत में मैं लिस्बन पोर्चुगल में टागस नदी के पास दौड़ रहा था। मैं एक निशानी के पास आया जैसे पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स ने गड़ा किया था। मैं रुक गया, सूरज की चमक इस निशानी पर आ रहा था और मेरे ऊपर भी। मुझको प्रेरणा मिली जैसे मैंने उस निशानी को देखा जो एक्सप्लोरर के चेहरे थे और देख रहे थे पानी की ओर। ये वे आदमी थे जो ऐसा कुछ करना चाहते थे जो कम लोगों ने किया। वे बेहतर के साथ समुद्र के में गया और नया देशों को खोज निकाला। ये लोग दुनिया को बदल दिया। मैं तुम्हारे देखता हूँ जब मुझे उन एक्सप्लोरर की याद आता है। मैं तुम्हें देखता हूँ एक सफर में जो कम लोग आज अपनाते हैं। मैं देखता हूँ तुम्हारे भगवान का कर्तव्य को पूरा करते हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम समझ महान आरोनिक प्रस्तुत को और भरोसा करें जैसे भगवान करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
The choir and
गाएंगे Glory to God on high। गाने के बाद प्रेजेंट डीटा एफ उगडोव जो फर्स्ट प्रेजेंस में सेकंड काउंसलर है हमसे बोलेंगे। उनके बाद मैं भाषण दूंगा।
My dear brethren, it's wonderful to be with you.
भाइयों, इत कितना अच्छा मौका है कि हम आपके साथ हो सके। 1960 में एक प्रोफेसर ने 4 साल के बच्चों को विल पावर यानी आत्मविश्वास को जांच किया। उन्होंने उनको मार्शमेलो दिया और कहा कि अगर वो 15 मिनट इंतजार करे तब उनको 2 और मार्शमेलो दिया जाएगा। फिर उन्होंने बच्चों को अकेल छोड़कर उनको देखने लगा।
उन बच्चों में से सिर्फ 30% ही इंतजार कर पाए.
Only 30% were able to wait.
उस प्रोफेसर ने कहा, बच्चों को मार्शमेलोस के बगैर और कुछ करना मुश्किल था.
For in his own words, there are only so many things you can do with kids trying not to eat marshmallows.
लेकिन कई साल बाद उन्हीं बच्चों से ये सीखने को मिला. जिन बच्चों ने इंतजार किया था उन्होंने पाठशाला में अच्छे मार्क्स पाए और उनको अच्छे काम मिले और उनके संबंध अच्छे थे.
And had healthier relationships.
वो बच्चे और मार्शमेलो से ये सीखने को मिला कि जो इंतजार कर सकते हैं और धीरज रखते हैं वो जिंदगी में कामयाब होते हैं.
Waiting can be hard.
इंतजार करना कठिन हो सकता है. बच्चे और बड़ों के लिए इंतजार करना कठिन हो सकता है. हम फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑन डिमांड मूवीज और जल्द जवाब के समय में रहते हैं. हम इंतजार करना पसंद नहीं करते. कुछों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है जब दुकानों में लंबे लाइन लग जाते हैं. धीरज एक अनमोल और निराला गुण है. इसे हम भूल जाते हैं क्योंकि हम पसंद नहीं करते. क्योंकि हमें जो चाहिए हम इंतजार नहीं करते. इसलिए धीरज बुरा और कठोर लगता है. लेकिन धीरज के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते. धीरज शुद्धता से हमारी समझ को सुधारता है, खुशहाली बढ़ाती है और शांति की आशा देता है. माता पिता को बच्चों की सभी चाहतों को नहीं निभाना चाहिए. अगर बच्चे इंतजार करना सीखेंगे उन्हें आगे चलकर कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
If children are ever going to mature and reach their potential, they must learn to wait.
धीरज सिर्फ इंतजार करना नहीं है. जब मैं 10 साल का था हम एक नए देश में रेफ्यूजी थे. मैं हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट था. जब मैं वेस्ट जर्मनी गया वहाँ मेरा तालीम अलग किस्म का था. ज्योग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ाई अलग थी. पहले मैं रशियन सीख रहा था और अब इंग्लिश.
It was English.
यह मेरे लिए कठिन थी. कई बार मैंने सोचा कि इंग्लिश सीखना मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि करिकुलम भी नहीं थी. मैं पीछे रह गया और फिर पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं स्मार्ट नहीं था. भाग्य से मेरा जो टीचर था उन्होंने सिखलाया मुझे धीरज रखना चाहिए. उन्होंने सिखलाया कि धीमा और अटल कार्य जो धीरज से होती है मुझे मदद करेगा. थोड़े दिनों में कठिन सब्जेक्ट समझ में आने लगी, इंग्लिश भी. अटल रहने से मैं समझने लगा. समझ जल्द नहीं आई लेकिन धीरज रखने से आई. मैंने अनुभव किया कि धीरज सिर्फ इंतजार करना नहीं था लेकिन अटल से अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना भी होता है.
और अगर असफल रहे तो निराश न हुए। धीरज नाकारा नहीं है और ना तो डर के कारण असफलता पाना है। धीरज का मतलब इंतजार और सहन करना है। इसका मतलब उस चीज के साथ ठहरना और वो सब करना जिससे आशा और विश्वास से आप अपना चाहत को पूरा कर पाए, चाहे देर भी हो जाए। धीरज सहन करना नहीं लेकिन अच्छे से सहन करना है। बेसब्री मतलबियों का एक लक्षण है जिसे सेंटर ऑफ द अर्थ सिंड्रोम कहा जाता है, जो लोग विश्वास करते हैं कि दुनिया उनके आसपास घूमती है और कि सिर्फ वो ही दुनिया में आवश्यक है।
Which leads people to believe that the world revolves around them and that all others are just supporting cast in the grand theater of mortality in which only they have the starring role.
मेरे भाइयों, प्रभु के रीति से ये कितना अलग है। धीरज प्रिस्टुट का एक नियम है। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए हमें उनकी तरह सेवा में लगा रहना चाहिए। एक कारण है कि प्रिस्टुट की लेसन सभी बार 121 सेक्शन से की डॉक्ट्रिन और कवनेंट से मिलती है। थोड़ी ही वेश में प्रभु ये सिखलाता है। प्रिस्टुट का कार सिर्फ समझने, बूझने, धीरज, कोमलता, नर्मता और प्रेम से ही किया जा सकता है। इन शब्दों में धीरज पवित्रता से बनी हुई है और प्रिस्टुट का कार्य से जुड़ा हुआ है।
To effective priesthood and patriarchal service.
ये आपको समझ और शक्ति देगा कि आप सुसमाचार को अपने कोरम में पढ़ा सके और अपने घरों में सेवा करें।
And in giving the most important priesthood service, which is indeed the loving service within the walls of your own homes.
हमें ये याद करना है कि प्रभु ने विश्वास के साथ हमें प्रिस्टुट दिया है कि हम धीरज के साथ अपना प्रिस्टुट कार्य करेंगे। जैसे प्रभु धीरज करता है, हमें भी दूसरों के साथ धीरज करना चाहिए। वो भी हमारे ही तरह है। हमें उनके विषय में अच्छा सोचना चाहिए। किसी पर हार नहीं मानना और अपने आप पर भी नहीं। जैसे प्रभु ने अपने कर्जदार को कहा था, हम उसी प्रकार कहेंगे कि प्रभु मुझ पर धीरज रखना। इसराइल के बच्चों ने 40 साल इंतजार किया था प्रॉमिस्ड लैंड जाने से पहले। जैकब ने 60 साल रेचल के लिए इंतजार किया था। जीव्स ने 70 साल बेबीलोन में इंतजार किया था टेंपल बनाने के लिए। निफाइटियों ने यीशु का जन्म होने का साइन के लिए इंतजार किया था। जोसेफ स्मिथ
लिबर्टी जेल में ठहरते समय जोसेफ स्मिथ ने लिखा, और कितने देर इन सभी समय स्वर्ग पिता का एक इरादा था कि उन्हें उनके बच्चे इंतजार करें। हम सभी को इंतजार करने के लिए सीखना है, प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए इंतजार करना, हमें इंतजार करना है, करना पड़ता है उन चीजों के लिए जो हमें हम सोचते हैं कि जरूरत है, लेकिन स्वर्ग पिता देर लगाता है। मुझे याद है जब मैं फाइटर पायलट के लिए ट्रेनिंग कर ले रहा था, हम ज्यादा समय कसरत करने के लिए बिताते थे। मैं अभी भी नहीं जानता कि क्यों पायलट बनने के लिए दौड़ना जरूरी था, लेकिन हम दौड़े और दौड़ते रहे। जब मैं दौड़ता तब मैंने महसूस किया कि और जो मेरे साथ दौड़ रहे थे वो वर्ड ऑफ विजडम के विषय में नहीं जानते थे। दौड़ते समय मैं सोचता था कि वर्ड ऑफ विजडम का आशीर्वाद है कि मैं थकूंगा नहीं, लेकिन मैं थक जाता था, और वो जो वर्ड ऑफ विजडम नहीं रखते थे मुझसे आगे निकल जाते थे। मैं उस समय अपने आप से पूछता था कि क्या वर्ड ऑफ विजडम का वादा सच्चा नहीं था। मुझे ये जवाब उसी समय नहीं मिला। फिर मैंने जाना कि प्रभु का वादा कुछ समय जल्द नहीं संपूर्ण होती। वह उनके समय और ढंग से पूरी होती है। कुछ साल बाद मैंने वर्ड ऑफ विजडम की आशीर्वादों को महसूस किया जो उसकी आज्ञा को पालन करने से मिलती है। अब पीछे देखकर मैं जानता हूं कि प्रभु का वादा जल्द से नहीं पूर्ण होती, लेकिन वह जरूर पूर्ण होती है। ब्रिगम यंग ने सिखलाया कि जब जिंदगी समझ में ना आए तो प्रभु से ये पूछो, मुझे धीरज दो कि मैं समझूं, और अगर मैं ना समझूं तो मैं प्रार्थना करता रहूं। हमें जानना चाहिए कि प्रभु हमें समझ कुछ समय आहिस्ते से देता है, लाइन अपॉन लाइन, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, और ज्ञान और समझ धीरज के द्वारा आता है। कुछ समय अगर हम पीछे मुड़ कर देखेंगे तो तजुर्बा के द्वारा हमें समझ मिल सकता है। कई समय हम प्रभु की हाथ नहीं देख पाते जब तक परीक्षा ढल नहीं जाती। कई समय इस तरह की परीक्षा के द्वारा हमें समझ और खुशी मिलती है।
Understanding and happiness. Patience is a godly attribute that
धीरज परमेश्वर का एक गुण है जो हमारे घाव को भरता है और छुपी हुई ज्ञान हमें देता है कि हम संत बन सके। अंत तक किसी के साथ रहना ही धीरज है। इसका मतलब भविष्य की आशीर्वाद के लिए आप अभी की आनंद को त्यागना। इसका मतलब गुस्से को काबू में रखना। इसका मतलब बुराइयों से दूर रहना।
To be making others rich.
जब बदलने में मुश्किल है और उसको विश्वास और हिम्मत से झेलना ही धीरज कहते हैं। इसका मतलब उन सभी चीजों को चुनना जो प्रभु चाहता है, जैसे हर एक बच्चा अपने पिता को सुनता है। प्रभु की आज्ञा का पालन मजबूती और अटल से करना ही धीरज कहते हैं। जॉन द रेवलेटर ने कहा है, संतों का धीरज यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन यीशु में विश्वास करके करें। धीरज से शुद्धता प्राप्त होती है। धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि धीरज के द्वारा हमारी आत्मा सुशील और शुद्ध हो जाती है। मसीह ने बतलाया है कि धीरज के द्वारा आप अपने आत्मा पर विजय पूर्ण पाते हैं। धीरज का मतलब कि हम विश्वास रखें ये जानते हुए कि कई समय मिलने से नहीं लेकिन इंतजार करने से ही आशीर्वाद प्राप्त होती है। ये सच्चाई मसीह के समय में था। अभी के समय में हमें आज्ञा दिया गया है कि हम धीरज रखें जब तक हम शुद्ध ना हो जाएं। साम्स में लिखा है कि अगर हम धीरज से इंतजार करेंगे तब प्रभु हमें सुनेगा। वह हमें कुएं से निकाल कर हमें जमीन पर लाएगा। वह एक नई गीत हमारे जबान पर लाएगा जो उनका जय जयकार करेगा। बहुत इसे देखेंगे और प्रभु में भरोसा करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, धीरज यही है कि आप आज्ञा का पालन करें, प्रभु पर भरोसा करें और उनकी सेवा प्रेम, विश्वास और मसीह पर आशा रख कर करें। धीरज का उपदेश यही है जो आपको अच्छा बनाएगा और आपको खुशहाली देगा या हमें हमारे प्रिस्टूट की कार्य में मदद करेगा कि हम यीशु के सच्चे चेला बन सके। या मेरा प्रार्थना है कि हम धीरज रखें और प्रभु की वादा और समय पर भरोसा रखेंगे। कि हम दूसरों की मदद धीरज और दया से करेंगे और कि हम धीरज रखेंगे जब तक हम शुद्ध न हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ आमीन।
Brethren, I am grateful to be
with you. मैं आभारी हूँ आपके साथ होने के लिए। मैं आभारी हूँ आपके प्रिस्टुड सेवा को जानकर। मैं प्रभु की सेवा में मन से करने के विषय में बोलूँगा। मेरा अनुभव इसकी चुनाव देती है। अभी जल्द मैंने एरोनिक प्रिस्टुड की किताब पढ़ी, ड्यूटी टू गॉड। जब मैंने इसे पढ़ा कि युवकों के या क्या बनाना चाहता है, तब मुझे प्रेसिडेंट ब्रिगम यंग की बातें याद आई, जब उन्होंने सभी प्रिस्टुड को मन से कार्य करने का वादा दिया था। जिनको प्रिस्टुड प्राप्त हुआ है, अगर वो विश्वास से निभाए और प्रभु की कार्य और सेवा हमेशा करे, उन्हें प्रभु का ज्ञान हमेशा प्राप्त होगा
सप्ताह
पहले मैंने एक डीकन को आगे के रास्ते में खड़ा देखा. उनके पिता ने मुझे एक चित्र दिखाया जो उनके बेटे ने बनाया था, जो सैक्रमेंट पास करने के निर्देशन था. उनके पिता और मैंने मुस्कुराते सोचा कि यह लड़का बिना बतलाए एक प्लान बनाया जो उनकी प्रस्तुत की सेवा में सफलता देगी. मैंने उनकी मन की सेवा देखी जो ड्यूटी टू गॉड की बुकलेट में पाया जाता है, जो है कि आप अपने कार्य को समझे, एक प्लान बनाए और उस प्लान को मन लगाकर पूरा करें. फिर आप अपने अनुभव से दूसरों को आशीर्वाद दें. उस डिकन ने एक चित्र बनाया कि वह प्रभु की कार्य को निभा सके. शुरुआत में ही प्रभु इस बच्चे को सिखला रहा था कि प्रभु के कार्य करने में कितना मजा आता है. एक और कारण मैं मन से सेवा करने के विषय में बतला रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक आदमी को उसके प्रस्तुत की सेवा की अंत में देखा. वो दो बार बिशप था. पहली बार जब शायद वो जवान था, उसे रिलीज होकर अब वह दूसरी बार बुढ़ापा में बिशप बना बुढ़ापा के कारण उन्हें सभी प्रस्तुत सेवा कठिन लगता था, लेकिन ये कार्य करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया. सेकंड मीटिंग शुरू होने से पहले वो दरवाजा के पास बैठा था. सभी लोग अंदर आते समय उनके प्रेम और स्वागत को महसूस करता था. उनके कार्य हमें अभिलाषा देती है, क्योंकि हम जानता था कि उनके लिए ये कठिन था. वो अब बिशप नहीं है, लेकिन उनकी सेवा समाप्त नहीं हुई. आपने ही ऐसा प्रस्तुत की जेलों को देखा होगा. आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि उनसे मैंने क्या सीखा है. शुरुआत होते है ये जानकर कि वो किसकी सेवा कर रही है और क्यों. जब ये उनके दिल में बस जाता है, वो उन्हें बदल देता है. शुरुआत में मैं आरोनिक प्रस्तुत की युवकों को बतलाना चाहता हूँ, आप इस कार्य में मन लगा सकेंगे जब आप प्रभु के भरोसा को महसूस करेंगे. फर्स्ट प्रेजेंस के ड्यूटी टू गॉड बुकलेट में ये आदेश दिया है, स्वर्ग पिता ने आप पर बहुत भरोसा और निष्ठा किया है कि आप उनके कार्य को निभाएंगे. वह आपका मदद करेंगे. आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को सुनो, आगे का पालन करो और अपने वादा निभाओ. जॉन द बैप्टिस्ट ने आरोनिक प्रस्तुत का फिर वापस लाया जो आपके पास है. यीशु इसी जॉन के पास बपतिस्मा के लिए गया था. जॉन को पता था कि किसने उसे बुलाया था. उन्होंने प्रभु से कहा, आप मुझे बपतिस्मा दीजिए. जॉन को मालूम था कि आरोनिक प्रस्तुत द्वारा स्वर्गदूत पश्चाताप और बपतिस्मा का विषय में प्रचार करते हैं, जब प्रभु ने उसको जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउड्री को मई 15, 1829 में ऑर्डेन करने के लिए भेजा था. उन्हें मालूम था कि किसने उन्हें बुलाया था और किस लिए. आपका प्रस्तुत बुलावा है कि आप प्रभु का सैक्रमेंट उनके सदस्यों को दें. यह शक्ति मसीह ने अपने 12 चेलों को दिया था. उन्होंने फिर जी उठने के बाद यह शक्ति 12 चेलों को दिया. बुक ऑफ मोमन के लोगों को प्रभु ने खुद सैक्रमेंट को बांटा था. जब आप इस कार्य को करो, तब उनको याद करो. जब आप उनका याद करेंगे, तब आप इस कार्य को विश्वास के साथ निभाएंगे। ये आपकी जिंदगी को एक रास्ता दिखलाएगा और आपकी शक्ति की आप मन लगाकर उनकी सेवा करें, उस शक्ति को बढ़ाएगा। प्रभु आपको तैयार कर रहा है, यही आपको मेलकिसेदेक प्रस्तुत के लिए तैयार करता है, जो प्रस्तुत परमेश्वर के पुत्र की विधि से है। अब मैं मेलकिसेदेक प्रस्तुत से बातें करना चाहूंगा। एरोनिक प्रस्तुत की तरह मेलकिसेदेक प्रस्तुत प्रभु के कार्य करना भरोसा से ज्यादा है। ये एक बुलावा है कि आप उनकी तरह बने। ये वादा उन्होंने दिया है, जो कोई इन दोनों प्रस्तुत को निभाएगा और पूरा करेगा, उनका पवित्र आत्मा शुद्ध पवित्र बनाएगा। वह मोसेस और एरन के बच्चे और अब्राहम, गिरजा और राजा का अंश बनेगा और परमेश्वर उन्हें चुनेंगे। प्रभु ने कहा, और जो कोई इस प्रस्तुत को अपनाता है वो मुझे अपनाता है, जो कोई मेरे सेवा को अपनाता है मुझे अपनाता है, और जो कोई मुझे अपनाता है मेरे पिता को अपनाता है, और जो कोई मेरे पिता को अपनाता है मेरे पिता के राज्य को अपनाता है, जो कुछ मेरे पिता का है उनका हो जाएगा। इसमें एक आदर्श है जैसे आपको वो आशीर्वाद मिल सकता है। डॉक्ट्रिन और कवनेंट्स के 107 सेक्शन में प्रभु ने बतलाया, सभी को अपना फर्ज सीखना चाहिए और अपने कार्य को मन लगाकर निभाना चाहिए। जो नकरा रहेंगे वो काबिल भी नहीं रहेंगे, और जो अपने फर्ज को नहीं सीखेंगे वो भी उनके सामने भी काबिल नहीं ठहराएंगे। हमें अपना फर्ज प्रभु से सीखना चाहिए और फिर उसे मन लगाकर निभाना चाहिए। यह रास्ता सीधा है लेकिन कठिन भी है, क्योंकि हमारा ध्यान हट जाता है। प्रस्तुत लेसन को पढ़ने से ज़्यादा न्यू पेपर ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बेहतर आराम करना प्रस्तुत सेवा करने से ज़्यादा अच्छा लगा है, ये गलती है। जब मुझे प्रस्तुत के फर्ज से ज़्यादा और कुछ खींचने लगता है, मैं ये आवाज़ देता हूँ, उनके याद करो, प्रभु हमारा आदर्श है, वो हमारा कैप्टन है, उन्होंने हमें बुलाया है, वहाँ हमारे आगे है, उन्होंने हमें चुना है। आज रात को मैं उन्हें याद करता हूँ और वो मेरे दिल में है। आज शनिवार है जब हम उनके जी उतने को याद करते हैं। मैं उनके आदर्श को याद करता हूँ। हमारे और पिता के प्रेम के लिए उन्होंने वो सब सहा जो हम नहीं सह पाते। उन्होंने हमें बतलाया उस बलिदान के विषय में। मैं आपको पश्चाताप के लिए आज्ञा देता हूँ, पश्चाताप करो वरना मैं अपने जबान की शादी से तुमको मरूंगा और मेरा क्रोध इस तुम्हें दंड मिलेगा। इतना ज्यादा पीड़ा होगा कि तुम सहा नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने इसको सहा है कि तुमको सहना ना पड़े। कैल्वरी के क्रूस में मसीह ने कहा खत्म हुआ, फिर उनकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ दिया, उनके शरीर को कब्र में रखा गया। उन तीन दोनों में प्रभु ने आराम नहीं किया लेकिन आत्मिक दुनिया में प्रचार किया। उसकी तरह मुझे भी आराम नहीं चाहिए लेकिन उनकी सेवा करना चाहिए। मसीह का उदाहरण मुझे हिम्मत देता है। यहाँ उनका कार्य समाप्त हुआ था लेकिन उन्होंने आत्मिक दुनिया में जाकर आत्माओं को बचाया। उन्होंने अपना कार्य वहाँ रचा कि उनके बलिदान के द्वारा उन आत्माओं को भी आनंद जीवन मिल सके। उन्होंने वहाँ विश्वासियों को इकट्ठा और उनको प्रचारक बनाया और उनको शक्ति और अधिकार दिया को सुसमाचार सभी आत्माओं को सिखलाया और इस तरह सुसमाचार उन लोगों को प्राप्त हुआ जो मर चुके थे और इस तरह चुने हुए प्रचारक उन सभी को सुसमाचार सिखलाया जो पश्चाताप करके प्रभु को अपना सके। जब भी हम उनको याद करते हैं उनकी सेवा करना सरल हो जाता है। हमें आज उनका याद किया होगा इसलिए हम यहाँ आए हैं कि हम अपने फर्ज को समझें और उसे मन लगाकर निभाएं और उनके आदर्श से हम अंत तक इस जीवन में कार्य करते रहेंगे जो कुछ पिता चाहते हैं। ये प्रभु का गिरजा है
This is the Lord's church.
उन्होंने हमें बुलाया और भरोसा किया है। वो हमारे मुसीबतों को जानता है। ईमानदारी से सेवा और अटोनमेंट द्वारा हम हो जान सकते हैं जो वो चाहता है कि हम दूसरों को आशीर्वाद दे सकें। अगर हम मन लगाकर सेवा करेंगे और करते रहेंगे हम बदल जाएंगे। हम उनकी तरह बनने लगेंगे। मैंने एक चमत्कार उनके सेवा को में देखा है। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक विश्वासी प्रिस्टुड होल्डर के लिविंग रूम में देखा। मैं डीकन पिता बिशप और स्टेक के प्रधान से उसे जानता हूँ। मैंने बहुत दिनों से उसे प्रभु के बच्चों को सेवा करते देखा है। उनके परिवार उनके पास लिविंग रूम में थे। वो मुस्कुरा रहा था। सूट और टाई पहने हुए थे। मैं वहाँ था क्योंकि मुझे बतलाया गया था कि डॉक्टरों का देखने के बाद वो चंगा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे प्रणाम किया जैसे वो सभी को करता है। मैं वहाँ उनके कठिन समय के लिए बुलाया गया था लेकिन मुझे खुद उनसे मदद मिली और सीखा। हमें बैठकर बातें की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मेरी माँ को आशीर्वाद दिया था जब वो मर रही थी। मैं ये नहीं जानता था। मैंने उसे सीखा कि जब वो बच्चा था उनके पिता ने उनको सेवा के विषय में सिखलाया था। मैं आभारी हूँ कि मैंने भी अपने बच्चों को सेवा के समय साथ लेकर गया था। कुछ ही समय में उन्होंने पूछा क्या आप मुझे ब्लेसिंग दे सकता है। उनके पुराने स्टेक प्रेसिडेंट ने मुझे पवित्र तेल से मलकेजदिक प्रस्तुत की शक्ति से अनोइन किया। जब मैंने आशीर्वाद दिया तब मैंने पवित्र आत्मा द्वारा सिखा जो प्रभु ने इस विश्वासी प्रस्तुत होल्डर के लिए किया था। वो शुद्ध था क्योंकि उसका पाप ढुल चुका था। वह मसीह की सोच से बदल गया था। उन्हें मृत्यु से डर नहीं था। उनका इच्छा सिर्फ यही था कि वो अपने परिवार और पिता के बच्चों का सेवा करे। लौटते समय मैं आभारी था कि मैंने प्रभु की कृपा उनके सेवक के मध्य देखा। वह उनके हृदय को बदल देता है कि वो वही करे जो मसीह चाहता है। मैं अंत में ये आदेश देना चाहता हूँ। धर्मशास्त्र को पढ़ो और समझो और प्रॉफिट के वाणी को सुनो। प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आपको पिता और पुत्र के विषय में सिखलाए। मांग करो कि पवित्र आत्मा आपको दिखलाए जो प्रभु चाहता है। उस कार्य को निभाओ, उस कार्य को सफलता से करो, और फिर प्रार्थना में धन्यवाद दो और मांग करो कि आगे आपको क्या करना है। मैं बयान देता हूं कि स्वर्ग पिता और यीशु मसीह जीवित है, जो जी उठा है और हम से पूर्ण प्रेम करता है और हमें देखता है। प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ को प्रिस्टूड की अधिकार वापस स्वर्ग दूतों द्वारा दिया गया था। ये अधिकार अब प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन के पास है। ये अधिकार सभी चेलों के पास भी है। अब मैं अपना आशीर्वाद आपको देता हूँ कि आप पवित्र आत्मा द्वारा महसूस करें, जो भरवा और वादा प्रस्तुत के द्वारा आपको इस सच्चा गिरजा में दिया गया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।
We remind you that the tabernacle.
हम आपको याद दिलाते हैं कि कल सुबह टैबरनकल को आया कि ब्रॉडकास्ट सुबह 9 बजे, 9:30 बजे से 10 बजे तक रहेंगे। संडे सुबह का सभा तुरंत फिर शुरुआत होगा। हम धन्यवाद देते हैं ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी के प्रिस्टिट क्वायर जो जिन्होंने संगीत दी है, और धन्यवाद है सभी भाइयों को। अब हम सुनेंगे हमारे प्यारे प्रोफेट थॉमस एस मॉन्सन से। प्रेजेंट मॉन्सन के बाद क्वायर गाएंगे द आयरन रोड। अंत में एल्डर माइकल जॉन यूथ है जो 70 का है, प्रार्थना करेंगे।
Before saying a word,
कुछ बोलने से पहले मैं याद करना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने ये जो प्रिस्टूड मीटिंग जो आए हैं, बहुत सौभाग्य से हम लोग बहुत सीखे हैं। हम लोग को ये बहुत याद करना चाहिए। भाइयों, तुम जो यहाँ पर हो, एक प्रेरणा देने वाली दर्शक हो। बढ़िया बात है कि हजारों गिरजों में दुनिया भर में अन्य लोग भी हैं, प्रिस्टूड भाइयों, जिन्होंने ये कार्यक्रम सेटेलाइट द्वारा दिखाई दे जा रहा है। तुम कई देशों में हो और तुम्हारी भाषा भी अलग है, लेकिन तुम सबको एक ही बात से जुड़े जाते हो। हमको ये शक्ति दिया गया है और हम भगवान के नाम से कार्य करते हैं। हमें ये पवित्र भरोसा सौंपा गया है, हमसे बहुत आशा भी गया है जाता है। मेरा एक उजियाला यादा है जब मैं नया डिकन बनाया गया था और हमें प्रिस्टूड की सभा में गाना गाया थे, कमोलिशन सब हु रिसीव द प्रिस्टूड। आज रात को मैं उस गाने को फिर दोहराना चाहता हूँ। आओ भगवान के बेटे, जिनके प्रिस्टूड मिला है, हम अपने आज्ञाओं को देखें, हम अपने जिम्मेदारी पर ध्यान दें और यीशु क्रिस्ट के राह पर चले। 20 साल पहले मैं एक सैक्रमन सभा में बच्चों को नए से विषय के बारे में बताया। मैं द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट का सदस्य हूँ। ये बच्चे दिखलाया कि वे तैयारी कर रहे थे प्रभु और अन्य लोगों के लिए। संगीत बहुत खूबसूरत था और आत्मा स्वर्ग की ओर जाता। एक मेरा पोता जो उस वक्त 11 वर्ष का था ने फर्स्ट विजन के विषय में बात किया। बाद में जब वह अपने माता पिता के पास आया, तब मैंने कहा, टॉमी, मैं सोचता हूँ कि तुम अब एक मिशनरी बन सकते हो। उन्होंने कहा, अभी नहीं, मुझे अभी और सीखना है। जैसे साल बीतता गया टॉमी सीखता गया. धन है कि उनके माता पिता टीचरों और गिरजा के सदस्य जो उनके सहयोग दी. जब वे और उमर के हो गए तब उसको मिशन का बुलावा आया. वह पूरी नम्रता से किया. युवकों मैं तुमको सलाह देता हूं कि तुम मिशनरी सेवा के लिए तैयारी करो. तुम्हारे पास कई औजार है जिससे तुम सीख सकते हो और तुम्हें सहयोग मिलेगा ताकि तुम अपने जीवन जी सकते हो और पवित्र भी. एक अवसर है पुस्तक फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ जिससे फेस प्रेजेंसी और कोरम ऑफ द ट्रोल्स ने बनाया. उसमें गिरजा के लीडरों के शब्द और सीख है जिसको पालन करने पर तुमको स्वर्ग पिता के आशीष और उनके बीते बेटे के निर्देश मिलेगा. और फिर मैनुअल्स भी है जिसको तैयार किया गया है प्रार्थना करने के बाद. परिवार फैमिली होम इवनिंग्स करते हैं जहां समाचार की सिद्धांत सिखलाया जाता है. हम सभी को मौका मिला है कि हम सेमिनरी क्लासेस में जाए जहां हम सिखाया जाता है काबिल टीचरों द्वारा. तैयारी करो मंदिर के विवाह के लिए मिशंस के लिए. डेट भी करने एक तैयारी है जहां पर डेटिंग के रुकावट नहीं है. डेट 16 वर्ष को के बाद करना. सभी लोगों को डेट करने की जरूरत नहीं है ये चाहते हैं. जब डेट करना शुरू करो तो लोगों के साथ जाओ और दो डेट्स पर. तुम्हारे माता पिता को डेट के विषय में जानना चाहिए क्योंकि डेटिंग शादी के शुरुआत है. तो तुम उनसे ही डेट करो जो ऊंचे विचार के हैं. उसी स्थान पर जाओ जहां मूल माहौल अच्छा है जहां तुम पर कोई कष्ट ना आएगा. एक बुद्धिमान पिता ने अपने बेटे से कहा अगर तुम अपने आप को ऐसे स्थान पर पाओ जहां तुम होना नहीं चाहिए तो भाग जाओ. ये हमारे लिए भी है. प्रभु के सेवक हमेशा हमको सलाह दी है कि हम अपने पाए नए को अच्छी तरह से करें ताकि हम स्वर्ग पिता को इज्जत दे सके. तुम्हारा पहनाव ये दिखलाया है कि तुम कौन हो और फिर तुम लोगों को कैसे वतलाप करते हो. पहनाव ऐसा करो ताकि तुमको इज्जत मिले और तुम्हारे आसपास है. घुटना और अपने देह में छेदना मना है. सभी को अच्छा दोस्त चाहिए. तुम्हारे दोस्त तुम्हारे विचार पर अक्सर कर सकते हैं जैसे तुम उनको. जब तुम अच्छे विचार अपने दोस्तों से बांटे हो तब तुम उनको सहानुभूति और हौसला देते हो. सभी को दया से पेश आओ. कई लोग जो गिरजा के नहीं है गिरजा में आते हैं क्योंकि उनके दोस्त उनके गिरजा के सभा में लाए हैं. एक कहावत है जो सच है, सच्चाई में ही चतुराई है. एक लेटर डे सेंट्स युवक ऐसा जीता है जैसे वह प्रचार करता है और विश्वास. वो दूसरों के साथ सत्य है, खुद के साथ है, भगवान के साथ सत्य है, अपने कार्य से भी सत्य है. जब एक कठिन समय आता है तब वह खुद से ये नहीं पूछता है और लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ. कुछ के लिए गलत राह पर चलना सच्चाई को छोड़ना है. एक बिजनेस लॉ खजाना में जो मैं कर रहा था मुझे याद है कि एक विद्यार्थी ने तैयारी नहीं की थी. मैंने सोचा कि कैसे ये अंतिम परीक्षा में अव्वल आएगा. मैंने जाना जब ये अंतिम दिनों में परीक्षा पर आया तो सर्दी के दिन पांव सिर्फ सैंडल पहने हुए थे. मैंने आश्चर्य और देखा उसने जब क्लास शुरुआत हुई उन्होंने सभी पुस्तक जमीन पर पड़ा था. सैंडल उन्होंने अपने पांव से उतारा और फिर अपने अंगूठे से पुस्तकों को पांव को उलटना शुरू किया और ताकि वो सवालों का जवाब ढूंढ सके.
Of one of the books which he'd placed on the floor, thereby viewing the answers to the examination questions.
उन्होंने सबसे अव्वल नंबर मिला. एक दिन आया फिर कि उसको दूसरी परीक्षा के लिए तैयारी देना था. पहली बार परीक्षा सवालों और जवाबों से होगा और लिखत में नहीं. हमारे विद्यार्थी जो अंगूठे से तैयारी करके आते थे, अब उसको उसने अपने अंगूठे अपने मुंह में धर लिया और फिर इस बार वो परीक्षा में असफल हुआ. कई तुम बात करते हो और शब्द को इस्तेमाल करते हो तुम्हें चरित्र बताता है. अपने शब्द से तुम अपने आसपास लोगों से की सुधार कर सकते हो. गंदा मजाक प्रभु के उचित नहीं है. भगवान और यीशु क्रिस्ट का नाम गलत इस्तेमाल मत करना. प्रभु ने कहा, प्रभु का नाम बार बार मत लो. स्वर्ग पिता ने कहा है कि अच्छाई को ढूंढो. जो भी तुम पढ़ो, सुनो या देखो तुम पर असर करेगा. पोर्नोग्राफी खतरनाक है और हमको उसे लगाव भी हो सकता है. इससे हम अपनी हरकत में काबू नहीं पा सकते और पाप करते हैं. पोर्नोग्राफी से किसी भी तरह हालात से छुटकारा पाओ. डरो मत, सिनेमे से बाहर चले जाओ. टीवी को बंद कर दो या रेडियो को बदल दो अगर वह स्वर्ग पिता के काबिल नहीं है. कम सुविधा में अगर तुम सवालों कर रहे हो किसी सिनेमा पुस्तक या कार्य में, तो मत देखो, मत पढ़ो और मत भाग लो. अपोस्टल पॉल ने कहा, जानो कि तुम एक भगवान के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में है. ये मंदिर परमेश्वर का है, भगवान का है और पवित्र है. जो मंदिर तुम हो. भाइयों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मंदिर को साफ रखें. नशीली पदार्थ और उसके गलत इस्तेमाल, शराब, कॉफी, चाय और तंबाकू हमको नष्ट करता है शरीर, दिमागी और आत्मा से. शराब हमारे लिए हानिकारक है. तंबाकू तुमको बंदी बनाता है, फेफड़े को कमजोर करता है और जीवन कम करता है. संगीत मदद कर सकता है, तुमको स्वर्ग पिता के पास लाएगा, ज्ञान देता है. संगीत के शब्द अगर गलत हो तो तुम्हारे आत्मा को नष्ट कर सकता है. अपने दिमाग में गंदा संगीत मत भरो.
With unworthy music.
एक रिश्ता जो सिर्फ विवाहित आदमी और महिला के बीच में है, प्यार का, उसे तुमको पवित्र रखना है अभी और शादी के बाद भी. डेट करो तो इज्जत दो साथ, और जिसके डेट करो उसको भी तुम्हें इज्जत देना चाहिए. पाप के बाद दुख आता है. प्रेसिडेंट डेविड मके ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध विचार सोचो.
तब फिर उनने ये सच्चाई बयान की, सभी कार्य करने से पहले हम सोचते हैं। अगर हम अपने कार्य संभालना चाहते हैं, हमको अपने सोच संभालना होगा। भाइयों, अपने दिमाग में अच्छे विचार को डालो और तुम्हारे कार्य सही होगा। तुम सभी ही ये बात जो सेगल हैथ ने टेनिसन से बोला था को कहा, मेरे शक्ति जैसे 10 की बराबर की है, क्योंकि मेरे दिल पवित्र है। एक ऑथर ने जब उन्होंने ये युवकों पर जानकारी की, यह समझ गलत प्रभाव देता विज्ञापन और मीडिया सेक्स के विषय में कहता है कि वो ठीक है।
Inducements sometimes drown out the warnings of experts and the pleas of parents.
प्रभु ने इन सभी समाचारों को काट देता है और इन शब्दों में साफ रहो। जब तुम पर संकट आता है तो अपोस्टल पॉल की सलाह याद करो जो वो बोला, तुम पर भारी संकट नहीं आया है लेकिन जो सब पर आता है। लेकिन तुमको भगवान तुम पर कठिन संकट नहीं देगा जो तुम झेल ना सको, परंतु संकट के साथ रास्ता भी निकालेगा ताकि तुम झेल सको। तुम पर पवित्र आत्मा की आशीष है। जब तुम इस गिरजे के सदस्य बना गया था, वह तुम्हारी मदद कर सकता है सही रास्ता अपनाने में। जब संकट में आओ तो खुद के अकेले मत समझो। याद रखो कि प्रार्थना ही तुम्हारे लिए शक्ति है। कोई भी सफर में गिर गया है तो रास्ता है वापस आने को, और वो पश्चाताप है। उद्धारकर्ता की मृत्यु हमारे लिए धन और तोहफा है। कठिनाई और लेकिन वादा सच्चा है। अगर तुम्हारे पाप लाल हो गए हो, फिर भी तुम बर्फ की तरह सफेद हो सकते हो। अपने आर्णवन जीवन को आनंद काल में मत छोड़ो। आज्ञा को पालन करो। पाप से जल्द से छुटकारा पाओ और तुम्हें क्षमा मिलेंगे। खुशी तुमको मिलेगी अगर तुम प्रभु के राह अपनाओ और भगवान की सेवा करो और लोगों को। खुद की आत्मिक शक्ति आती है जब तुम सेवा करो। कुछ साल पहले मैं कैलिफोर्निया मिशन में गया, जहां मैं एक जवान मिशनरी को इंटरव्यू किया जो जॉर्जिया से था। मुझे याद कि मैंने कहा, क्या तुम अपने माता पिता के पास खत भेजते हो हर हफ्ते? उन्होंने कहा, हाँ भाई मोनसन, हाँ। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पसंद है अपने घर से खत मिलने पर? वह जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पूछा, आखिर बार कब तब तुमने खत मिला था घर से? धीमी आवाज से उन्होंने कहा, मुझको अपने घर से कभी भी ना खत मिली। पिता अभी भी डिकन है और माँ गिरजा के सदस्य नहीं है। वह चाहते थे कि मैं नहीं आऊं। उन्होंने कहा कि अगर मैं मिशन पर जाऊंगा तो उन्हें मुझे पत्र नहीं लिखेंगे। अब मैं क्या करूं? मैं प्रार्थना किया, मैं इस छोटे सेवक को क्या बताऊं जो सभी बलिदान करके तुम्हारी सेवा में आया है। प्रेरणा आई। मैंने कहा, एल्डर, तुम अपने माता पिता को हर हफ्ते एक खत भेजो। उनको बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। उन्हें बताओ कि तुम कितने प्यार करते हो, और फिर अपने बयान दो। वो पूछा, क्या वो फिर मुझको खत लिखेंगे? मैंने जवाब दिया, हाँ वो लिखेंगे। हम दोनों फिर अपने रास्ते चले गए। कुछ महीने बाद एक स्टेक कॉन्फ्रेंस में पश्चिम कैलिफोर्निया को गया, जहां एक मिशनरी मेरे पास आया और कहा, भाई मॉन्सन, क्या तुमको याद है मैं तुमको क्या कौन हूँ? मैं वह मिशनरी हूँ जो जिसको 9 महीने पहले अपने माता पिता के पास से पत्र नहीं मिला था। तुमने कहा था हर हफ्ते पत्र लिखो अपने घर के लिए और फिर तुम्हारे माता पिता भी लिखेंगे। तब उसने मुझसे कहा, क्या तुमने वादा किया वो याद है भाई मॉन्सन, एल्डर मॉन्सन? मुझको याद आया। मैंने पूछा, क्या तुमको जवाब मिला अपने माता पिता से? उन्होंने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ खत निकाले जो बटे हुए थे। उसने ऊपर से एक खत निकाला और कहा, मेरे माता पिता मुझका पाता पिता ने लिखा है, इस पत्र को सुनो जो मेरे माँ ने लिखा है। बेटा, हम तुम्हारे खत को पढ़ना पसंद करते हैं। हम खुश हैं कि तुम हमारे मिशनरी हो। और सोचो क्या हुआ, पिता को प्रिस्ट की शक्ति मिल गई है और वो मुझको बैप्टिस्मा देने की तैयारी कर रहा है। मैं मिशनरी से मिल रही हूँ और अब से 1 साल बाद हम लोग कैलिफोर्निया को आएंगे जब तुम अपने मिशन के अंत में आओगे, क्योंकि हम तुम्हारे साथ परिवार में जुड़ जाना चाहते हैं मंदिर में जाके। भाई मॉन्सन, क्या स्वर्ग पिता हमेशा हमारे प्रार्थना का जवाब देता है और अपोजल्स का वादा पूरा करता है? मैंने कहा, जब किसी के पास तुम्हारे जैसा विश्वास हो, हमारे स्वर्ग पिता प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपने तरह से जवाब देता है। पवित्र हृदय और चाह स्वर्ग को छू जाए। एक आशीष स्वर्ग से आया जो एक प्रार्थना था एक मिशनरी का नम्रता दिल से। भाइयों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम ऐसा जिएं कि हम भी स्वर्ग को छुएं और ऐसी आशीष पाए। हम सब यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Our dear Father in heaven.
Ay, हमारे प्यारे पिता, हम नम्रता से आपके पास आते हैं. अंत में ये प्रिस्टुड सेशन के जनरल कॉन्फ्रेंस का हम आभारी हैं आपके जो प्रॉफिट्स सीयर्स और रेवलेटर्स हैं. हम आभारी हैं जो हमने लेसन सीखे हैं और जो बातें हमने सुनी और जो बयान इन लोगों ने किया है. और खास करके हम धन्यवाद दें पवित्र आत्मा के लिए जो इस मीटिंग्स में थे और जो वाणी हम लोग के मन में दिए हैं और दिलों में हम सत रहे उस प्रेरणा की जो हमको मिला है, ताकि हम आगे बढ़ें और सभी कार्य करें, ताकि हम सब कार्य कर सके जो आप हमको देते हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सहायता करें, कि हमको शक्ति मिले और हम अपने विश्वास के हम विश्वास से वो सब चीज पाएं जो आप हमने दिया है, खास करके जो ये प्रिस्टुड, ताकि हम आपके हाथ में औजार रहें, ताकि हम और सब लोगों को आशीष दे सके जो आपके बच्चे हैं. हम आपसे प्यार करते हैं पिता, और हम प्यार करते हैं आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को, जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन.